ओम शांति। अभी तो ओम शांति का अर्थ से भी परिचय हो गया है। जब भी हम ओम शांति कहते हैं तो अंदर का भाव ये है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और आप भी शांत स्वरूप है। तो कितनी अच्छी स्मृति है। हर एक पूछता है कि हम क्रोध को कैसे जीते, हम टेंशन फ्री कैसे बने, हम चिंता कैसे कम करें। तो उसका उत्तर यही है कि आपको आपकी स्मृतियों को बदलना होगा। दिन में कितनी बार आप अपने को याद दिला सकेंगे, मैं आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप हूं। ओम शांति। जितनी स्मृति बदलेगी उतना आपके अंदर की वृत्ति भी जरूर बदलेगी। आत्मा अविनाशी है लेकिन आत्मा के अंदर ढेर सारी स्मृतियां हैं। अब आपके ऊपर है, आपको कौन कौन सी स्मृतियों के साथ खेलना है। जैसे किचन होता है और कोई ने मिर्ची बंद की है खाने की, जो मिर्ची के पाउडर का बॉक्स होगा वो क्या करेगा, पीछे रख देगा। खानी नहीं है तो फिर आगे रख के क्या मतलब है। जो लेना होगा वो आगे रखेंगे और जो नहीं खाना है उसको पीछे कर देंगे। तो वो फिजिकली करते हैं, ये हमें मन से करना होता है। कि अब मुझे पता चला कि मैं वास्तव में शांत स्वरूप हूं तो मुझे कौन सी स्मृति को हर समय आगे रखना है और जो मुझे नहीं करना है उसको मुझे उस द्वारा पीछे करना है। ये कहते रहेंगे कि नहीं क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा, वो और ही आता है। लेकिन स्मृतियों को बदलेंगे, ज्यादा स्मृति शांत स्वरूप की होगी तो सामने वाले के अंदर क्रोध होगा लेकिन आपको क्रोध करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी ज्यादा से ज्यादा स्मृति कौन सी चल रही है, मैं शांत स्वरूप हूं। जैसे आपको अपना नाम कैसे याद रह गया, समझो आपका नाम योगेश है तो आपको लोग भी बार बार योगेश के नाम से बुलाते हैं, आप भी वैसे याद करते हो। तो अगर एक दिन कोई ने कहा महेश तो आप क्या बोलेंगे, मेरा नाम महेश नहीं है, मेरा नाम क्यों, क्योंकि बार बार स्मृति में कौन सा आया, योगेश। तो फिर हम फट से कह देंगे भाई मैं महेश नहीं, मैं योगेश हूं। जो स्मृतियों का खेल है ना ये, उसी को हमें चेंज करना है। बहुत सीरियसली ले लेंगे तो इसका भी टेंशन हो जाएगा, पर समझो ये मेरा स्मृतियों का खेल है। अब मुझे कौन सी स्मृतियां यूज करनी है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम जैसे सुबह देखा सृष्टि को हमने एक चक्र के रूप से देखा, याद आया, स्वस्तिक फिर चक्र के रूप से देखा है ना। आत्मा कैसे विभिन्न स्थितियों से गुजरती है एक चक्र में, तो हमने केवल आत्मा की स्थिति का स्टडी किया सृष्टि के चक्र में, है ना। हमने और कोई बात की, केवल आत्मा का दर्शन किया सृष्टि चक्र के लेसन में। तो अब आपको जब भी आत्मा का दर्शन करना होगा आप कौन सा चित्र और कौन सा लेसन सामने लाएंगे। एक तो सबसे पहला लेसन आत्मा का और दूसरा सृष्टि चक्र, ये दो सामने लाएंगे तो आपको आत्मा के दर्शन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो मेडिटेशन में भी ला सकते हैं ना ये दोनों बातें। जैसे आप थिएटर में बैठ करके कैसे स्क्रीन पर मूवी देखते हैं, ऐसे मेडिटेशन में बैठ करके आपके मन और बुद्धि द्वारा आप सारे सृष्टि चक्र को अपने बुद्धि के नेत्र से देख सकते हैं और आप अपना दर्शन कर सकते हैं। और उसमें भी अगर समझो कि अब मुझे अच्छे से अच्छा दर्शन करना है तो कौन सा युग याद करोगे? आपका अच्छे से अच्छा दर्शन कौन से युग में है बोलो? सतयुग में। तो उसे ज्यादा याद करेंगे कि मैं सतयुग में कैसे थी, ये मेरा स्वरूप है सतयुग का, ऐसे उसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपके मन बुद्धि में वही चित्र ज्यादा से ज्यादा अंकित होता जाएगा, तो उसके अनुसार विचार बदलेंगे। बाहर जाके अगर भूल गए तो फिर अभ्यास ही नहीं होगा, तो परिवर्तन कैसे आएगा, है ना? अब हम क्या देखने वाले हैं आज? आज हम सृष्टि को ही एक वृक्ष के रूप में देखेंगे और वृक्ष में हम आत्मा के धर्म के बारे में जानेंगे। सृष्टि चक्र में आत्मा की स्थिति के बारे में जाना कि परमधाम में इतनी प्योर आत्मा कैसे अलग अलग स्थिति से गुजरती है समय के अनुसार। कौन सी चार स्थिति? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, और फिर संगम पर आती है आत्मा जहां तमो प्रधान और सतो प्रधान दोनों स्थितियों से वो पहचान उसे वापस मिलती है और उसे संकल्प आता है कि अब समय आ गया है कि मुझे फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचना है। इसमें हम देखेंगे आत्मा का स्वधर्म और फिर उससे कैसे कैसे धर्म स्थापन हुए, वो भी नेचुरल है। यहां किसी का कोई दोष नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, हर एक चीज अपने समय पर आती गई और हर एक चीज को चार स्थितियों से गुजरना है, वो तो कॉमन रहेगा, तो धर्म को भी गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आज का ये जो सेशन है अपना, सबसे पहली बात क्या समझेंगे, धर्म किसको कहा जाता है, उसकी स्पष्टता। एक धर्म होता है जिसमें, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और हमारे पेरेंट्स हमको जिससे परिचित कराते हैं हम उसी धर्म को फॉलो करते हैं। दूसरा होता है कि भले हम एक धर्म में जन्म लिए होंगे लेकिन हमें आकर्षण किसी और धर्म का ज्यादा होगा और हम वही जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी होता है, है ना? फिर तीसरा धर्म लोग कहते हैं मानव सेवा, कि मानव सेवा जो करता है वही सच्चा धर्म फॉलो करता है, इसीलिए वो क्या करता है मानव सेवा के लिए, अलग अलग प्रकार की मदद करता है, अन्न की मदद, कपड़ों की मदद, और भी एजुकेशन शिक्षा की मदद, कोई दवाइयों की मदद, ऐसे सब अलग अलग मदद करते हैं। तो धर्म बहुत अलग अलग करती है, पर कहीं तो हमको मिलना होगा ना, ऐसे बोलने से तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है सभी धर्म यही प्रूव करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे पुराने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम अगर बहुत बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा अपने धर्म के बारे में बताएंगे, तो धर्म युद्ध की स्थिति आ जाती है और बहुत बार आई भी है। इसीलिए आज हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो धर्म क्या चीज है सचमुच, कहां से शुरू होती है धर्म की बातें, वो हम देखेंगे। दूसरा, सच्चे धर्म को प्रैक्टिस करने का आधार क्या है। अगर हम सचमुच धर्म में बिलीव करने वाले लोग बैठे हैं, हमें नास्तिक नहीं रहना है, तो फिर आधार जानना पड़ेगा। आधार क्या है कोई भी धर्म की प्रैक्टिस करने का। दूसरा, साक्षी होकर के देखना होगा कि कैसे मानवता समय के प्रति समय अलग अलग फेजेस में धर्म का रूप बदलते बदलते चला आया है, उसको भी देखना होगा। सारा चित्र नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, तो पूरा मैक्रो तो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन देखने का नजरिया क्या है कि हम सच्चाई तक पहुंचे। और यहां कोई नहीं कहता है कि अपने धर्म को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, पर अपने धर्म की सच्चाई पे तो पहुंचना पड़ेगा। वो धर्म ऐसा हो जो हमें धारणा सिखाए, बेहतर मनुष्य बनाए, ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गीता में 15वां अध्याय है जहां पर ऐसे कोई वृक्ष का वर्णन किया गया है और उसे नाम दिया गया है कल्प वृक्ष। और हमने देखा कि आत्मा जो चार युगों से पार होती है वो एक साइकिल, एक चक्र, उसे ही कहा जाता है एक कल्प। और जो चार डिफरेंट सेक्शंस है उसको कहा जाता है युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। और जब चार युग पूरे होते हैं वो सारे समय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कल्प। तो ये सारा झाड़ हमें पूरा कल्प दिखाएगा, the entire 5000 years। और उसमें क्या क्या परिवर्तन आया वो हमें महसूस कराएगा। क्रिश्चियनिटी में भी आपने देखा होगा झाड़ दिखाया है, कौन सा झाड़, क्रिसमस ट्री। और उसमें भी आप देखिए इतने डेकोरेशंस लगाते हैं, हर जगह लाइट्स लगाते हैं, डेकोरेशन लगाते हैं, और ऊपर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सितारा होता है कि नहीं। और सभी अपने घरों में क्रिसमस ट्री, लेकिन कभी नहीं पूछा कि क्यों लगाते हैं, इसका क्या महत्व है। और जो गीता में कल्पवृक्ष का वर्णन है वो तो और भी अजीब है। कहते हैं कि वृक्ष उल्टा है, अगर सचमुच फिजिकली कोई उल्टा वृक्ष होता तो क्या हमको आज तक पता नहीं चलता। तो फिजिकली नहीं, लेकिन कोई अर्थ से हम देख सकते हैं कि ये एक उल्टा वृक्ष है, क्योंकि ये सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। और इस सारे झाड़ का बीज कौन है, हम तो डेकोरेशन है ना झाड़ के, वो जो क्रिसमस ट्री पे डेकोरेशन बताया वो कौन है, हम है, अलग अलग प्रकार के सब। और बीज कौन है, पहचाना, बीज को पहचाना, सोचो, हम आत्मा डेकोरेशन है झाड़ के, तो बीज कौन होगा, हु इज द सीड, बोलो, परमात्मा। वो तो झाड़ में है ही नहीं, वो कहां पर है, परमधाम में। परमधाम में बीज है और झाड़ कहां उगता है, नीचे सृष्टि पर। तो कैसा हो गया झाड़, उल्टा हो गया, बीज ऊपर और सारा झाड़ नीचे डेवलप हो रहा है, तो ये उल्टा वृक्ष हो गया ना। तो हम सब उल्टे वृक्ष में जी रहे हैं, लेकिन समझने के लिए हम उसको सीधा देखेंगे। ऐसे ही परम धाम में एक निराकारी झाड़ है, जिसमें इस सृष्टि के झाड़ का कोई डेकोरेशन नहीं है, वहां केवल आत्माओं का झाड़ है। उसे भी उल्टा दिखाया है, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन में परमात्मा है और फिर बाकी सभी आत्माएं, वो भी एक झाड़ के रूप में है। उसको कहते हैं निराकारी झाड़। और ये झाड़ कौन सा है? साकारी झाड़, फिजिकल, जिसमें आत्मा शरीर लेकर के पाठ बजाती है। तो ये सारी फिजिकल दुनिया हो जाती है, पर परम धाम में कौन सी वर्ल्ड है? निराकारी। तो केवल आत्माओं का झाड़ होता है। आपको कहीं वो पिक्चर दिखेगा यहां परम धाम का, उसमें ध्यान से देखना तो आपको वो उल्टा वृक्ष नजर आएगा। फिर उसमें देखना आप आत्मा कहां पर हो, फील करना परमात्मा के नजदीक हो, परमात्मा से थोड़े दूर हो या बहुत दूर हो, आपको खुद को फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ऐसी बिलीफ है कि अगर कोई साधु को आशीर्वाद मिल गया कि अभी आपको कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करनी है, मतलब वो बहुत तपस्या के बाद मिलता है फल के रूप में, समझा? और जब वो मिलता है ना, वो साधु इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे सब कुछ मिल गया। और इसीलिए कल्प वृक्ष की महिमा है कि आप अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, आपको सब कुछ प्राप्त है। राजयोग के लिए भी ऐसा कहा गया है। आप कोई भी ज्योतिष के पास जाओ और अगर वो ज्योतिष आपको कहता, अरे आपका तो 6 मास अभी राजयोग है, माना वो क्या कह रहा है, 6 मास आने वाले आप में कोई कमी नहीं होगी, आपके पास सब कुछ होगा। तो कहने का भावार्थ है कि कल्प वृक्ष का जो नीचे का स्थान है अभी, और अगर हम वहां बैठते हैं मन और बुद्धि से, तो हमें सब कुछ प्राप्त है। अभी हम आए हैं किस स्थिति में, ढूंढते हुए आए हैं। चलो देखे यहां क्या बताते हैं, यहां क्या सिखाते हैं, क्योंकि आत्मा ढूंढ रही है कि मेरे लिए सत्य जो है वो कहां है। तो झाड़ में ढूंढते आप यहां आए हो, और अब देखेंगे कि यहां पर हमें एक्चुअली अपनी पोजीशन कहां मिलती है। एक तो उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। दूसरा, जो झाड़ के नीचे बैठेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिना कर्म के मनोकामनाएं पूर्ण होती है? कभी नहीं। ये मत सोचना कि कर्म के बिना मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ होती जाएगी ना कि ऐसे कर्म की पूंजी आपकी बनती जाएगी कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपको कभी मन में कोई नुकसान, कोई लॉस का विचार ही नहीं आ सकता है। तो ये समझाने के लिए बनाया है। फिर मैं आपको चित्र भी बताऊंगी कल्प वृक्ष का, जो हमारी संस्था में आदि में ये सारे चित्र, जो सृष्टि चक्र का भी दिखाया था ना, और ये कल्प वृक्ष का भी है, कल आपको कर्मों की सीढ़ी दिखाएंगे, वो सारे चित्र साक्षात्कार से बने हैं, क्योंकि ये कोई चित्र थे ही नहीं। तो जब परमात्मा ज्ञान देने लगे और जिनको साक्षात्कार कराते गए, वो ऐसे वर्णित करते गए और चित्र बनता गया। तो ऐसा झाड़ का साक्षात्कार हुआ, उसमें बीज देखो चमक रहा है। हम सबका फाउंडेशन ही परमात्मा है, इसलिए कहते हैं ना कि हम भगवान के अंग है, बिछड़ गए हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। हम अंग नहीं है, लेकिन हमारा फाउंडेशन परमात्मा है, हमारे आधार मूरत परमात्मा है। इसीलिए हमको बहुत एक कहते हैं ना कि नजदीकता समीपता फील होती है। कहीं तो यही कहते हैं, हम तो उनमें से ही आए हैं, उनमें ही जाएंगे, इतने तक बोलते हैं, मतलब भावना इतनी ऊंची हो जाती है। पर वास्तव में ये पूरे 5000 साल के जीवन काल, जीवन और मृत्यु काल में जो फाउंडेशन है वो है शिव परमात्मा। और अभी हम कहां पर है सृष्टि में, वृक्ष में कौन सी पोजीशन पर अभी है पता है आपको? एकदम ऊपर, झाड़ के एकदम ऊपर है हम। शिव बाबा एकदम नीचे है और हम कहां पर है? एकदम ऊपर। और ऊपर में झाड़ कैसा होता है? बहुत सारी डालियां, बहुत सारी टाल टालियां, बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फल। हम ऐसी दुनिया के समय में जी रहे हैं जब सब कुछ बहुत 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 ज्यादा वृद्धि को पा चुका है, लेकिन बीज से दूर है। सब कुछ है लेकिन बीज से कनेक्शन नहीं है। हम सब अपनी अपनी डाली पकड़ के, सब डाली पकड़ के बैठे हैं, फिर भी पूर्ण विश्वास न होने के कारण कभी कभी दूसरी भी डाली पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहां ढूंढते हैं, थोड़ा वहां से लेते हैं, थोड़ा वहां से लेते हैं। कोई लोग ऐसे हैं आज के समय में कहते हैं, हम तो सब में मानते हैं, जब सत्य नहीं मिला तो अभी क्या कह सकते हैं कि भाई एवरीथिंग इज गुड, ऑल रिलीजन्स आर गुड, मैं तो सब में मानती हूं, है ना ऐसे लोग दुनिया में। ये सबके अपने अपने अनुभव है। ये जो यात्रा होती है ना बीज से लेकर के पूरे झाड़ के अंत तक, इस यात्रा के हर एक आत्मा के अपने विभिन्न विभिन्न अनुभव है। अब देखिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतनी आपकी जो जर्नी हुई होगी, आपके अंदर कितना अनुभव का खजाना होगा, कितना कहां कहां नहीं गए होंगे, क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या क्या नहीं अनुभव किया होगा। पर फिर भी एक प्रकार का खालीपन है, जहां पर हमको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी खालीपन है। तो हमें देखना होगा कि कहां से शुरुआत हुई। जब हम बीज के साथ थे ना, जहां पर मूल है, बीज के साथ क्या होता है? मूल होते हैं जड़े, और जड़े पूरे झाड़ को थमा के रखती है। पर अभी तो कलयुग का समय है तो जड़े कैसी हो गई होंगी? कलयुग के समय में आत्मा तमो प्रधान हो गई है सब, तो जड़े कैसी हो गई होगी? कमजोर या मजबूत? कमजोर। अब इन जड़ों को फिर से मजबूत करके एक नव निर्माण करने का समय है, और उसी के लिए परमात्मा को आना होता है। कोई नया बीज तो नहीं मिलेगा, कोई नया बीज नहीं मिलेगा, हम भी वही बीज होंगे, परमात्मा भी वही बीज होगा, लेकिन हम मिलके नव निर्माण का कार्य करते हैं। इसीलिए अभी का समय, हम जो अभी अनुभव कर सकते हैं वो है जड़ों का समय, और उसी को संगम युग कहा गया है। जैसे हमने देखा ना, वो जो घड़ी के जो दो क्या कहेंगे उस कांटे थे, उसमें थोड़ा समय बाकी था 12 बजने के लिए। वो जो थोड़ा समय है जिसमें परमात्मा अवतरित होते हैं, वो झाड़ में जड़ की जगह है। इस जड़ों में संगम युग का समय है। तब परमात्मा क्या करेंगे, कहां से कुछ नया ला सकते हैं क्या? कुछ नया है ही नहीं दूसरा जो लाए। जैसे हमारे वैज्ञानिक ढूंढते ना, मार्स में नई लाइफ मिलेगी, दूसरे ग्रह पे नई लाइफ मिलेगी। परमात्मा को तो पता है, हम भी वही है, वो भी वही है। इसीलिए संगम युग की जड़ का समय अभी, वो हमारी जड़ों को फिर से मजबूत बनाने के लिए आए हैं, फिर से, है ना? तो हमें फिर से कैसा बनना है? मजबूत बनना है। हमारे जीवन को हमें फिर से मजबूत बनाना है। तो परिस्थितियां तो नहीं सुधरेगी बाहर की, कलयुग है और कलयुग की भी अति है, तो बाहर की परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी तो क्या करेंगे? संकल्प लेना होगा कि बाहर की परिस्थिति जो भी हो, मुझे अंदर से बदलना है, क्योंकि मैं प्योर थी और मुझे प्योर बनना है फिर से। और यही संदेश परमात्मा देते हैं कि आप मेरे अविनाशी काल से बच्चे हो, मेरे सितारे हो, मेरे घर के सितारे हो, धरती के सितारे हो। हमें मिलके फिर से आंतरिक रूप से नव निर्माण करना है, क्योंकि हमने देखा कि आत्मा की स्थिति अनुसार प्रकृति बदलती रहती है। आत्मा अगर गोल्डन है, जैसे अगर सोना अच्छा हो तो जेवर भी टॉप क्लास बनेगा, ऐसे आत्मा सत्व प्रदान होगी तो सारी प्रकृति, ये शरीर जितना भी हमें मिलता है वो कैसा होगा? टॉप क्लास होगा। पर अभी तो हम कलयुग में है और कलयुग में हर चीज बिखरी हुई है, बिखरी हुई है, इसलिए कोई भी एक चीज से हमें सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को वहां ऊपर से जड़ों में लाना होगा। जहां पर भी हम है आज, केवल अपनी बुद्धि को जड़ों में लाना है वापस, कि परमात्मा की के संग में, परमात्मा के साथ में मुझ आत्मा को, अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है फिर से। फिर से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमात्मा कैसे करते हैं पता है? पहली चीज है तपस्या, उनकी विधि बता रही हूं। पहली चीज है तपस्या। क्या तपस्या कराते हैं? तो वो कहते हैं, ना तुम्हें गुफाओं में जाना है, ना तुम्हें घर बार छोड़ के जंगलों में जाना है। तुम जहां भी हो, घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कमल समान जीवन जीना सीखना होगा, सीखना होगा फ्रॉम ए बी सी डी। कमल कहां रहता है? बिल्कुल कीचड़, इवन उसके संबंधी कीचड़ में, सब कीचड़ में, पर वो कहां खिलता है? ऊपर, कीचड़ से न्यारा। इसलिए मंदिर में उसे लगाते हैं, ऑफर करते हैं। तो शिव परमात्मा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, ये जो हम संसार में रहते हैं उसी में रहते हुए वापस सीखो, मैं कमल समान कैसे बनूं। आपको संसार में कौन मदद करेगा इसके लिए? संसार में कौन मदद करेगा? कोई नहीं। दिस इज नॉट अ नेगेटिव थॉट, पर आत्मा तो आत्मा है ना, उसे अपने आप ही करना होगा। अगर कोई मददगार है तो वो परमात्मा है। हाँ, आप किसी को इंस्पायर करो, प्रेरणा दो, आप उनका भी जीवन बनाओ, तो आपको संग मिलेगा। लेकिन आप बिना कुछ करे आप संघ की इच्छा रखोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्टार्ट कहां से होगा? अपने आप से होगा। तो पहली तपस्या क्या है? घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे अब कमल समान जीना सीखना है, दुखी में दुख में दुखी नहीं होना है। कमल समान मना क्या? ग्लानी में नाराज नहीं होना है, वो है कमल समान। तो शक्ति कहां से मिलेगी उसकी? कहां से मिलेगी? बीज से, परमात्मा से। इसलिए बीज के साथ रहना जरूरी है और उनसे शक्ति मिलती जाएगी और आत्मा कमल समान बनता जाएगा। हम दुनिया को छोड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आजकल कैसे नौकरियां बदलते रहते लोग, ऐसा नहीं हो सकता है, है ना? संसार से तो नहीं भाग सकते हैं, पर कमल से। पहली तपस्या है। तो घर कैसा होगा? अगर आप कमल समान रहोगे तो घर में परिवर्तन आएगा ना। फिर दूसरी तपस्या है कि मुझे धीरे धीरे अपनी बुद्धि को एक परमात्मा के साथ जोड़ देना है। भले मैं सबके साथ रहती हूं, सब कार्य करती हूं, आगे भी बढ़ रही हूं, कमाई का साधन भी है मेरा, सब कुछ है, लेकिन मेरी जो बुद्धि का केंद्र है ना, वो मुझे एक करना है परमात्मा। अभी बुद्धि का केंद्र कैसा है? फैला हुआ पूरा। हमारी तपस्या होगी कि हम जो भी कर्म करें, हमारी बुद्धि का केंद्र परमात्मा की ओर हो और फिर कर्म करें। ये दूसरी तपस्या है। आखिर में आत्मा को फील होगा सच्चाई कि हाँ, मीराबाई तो कहती थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई फील हो रही है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और ये मान्यता नहीं है, ये एक सत्य है जो आत्मा को फील होगा। हम कोई नई मान्यताएं नहीं बना रहे हैं, हम केवल सत्य को जी के देखना चाहते हैं कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में बुद्धि एक के पास टिकी रहे, ये हमारी दूसरी तपस्या है। तीसरी तपस्या कि परिस्थितियों की लहरें आती रहेगी, लेकिन मुझे उनमें ही अपनी अवस्था को मजबूत बनाते जाना है और नए नए पाठ सीखते जाना है। हारना नहीं है, आएंगी हराने के लिए, लेकिन मुझे, क्योंकि परमात्मा मेरे साथी है, मुझे सीखते हुए आगे जाना है। जैसे थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, उसने 2000 प्रयोग किए जिसे बल्ब नहीं बना, नहीं बना। 2001 जो प्रयोग किया तब बल्ब बना। तो प्रेस वालों ने उसे पूछा कि आपको जरा भी नाराजगी नहीं हुई, आप हताश नहीं हुए, 2000 प्रयोग किए तो भी बल्ब नहीं बना? कहता है नहीं, मुझे पता चला ना, मैं सीखा कि कहां कहां भूल थी और आखिर में बना। तो जब वो 2000 प्रयोग कर सकता है एक बल्ब के लिए, तो क्या हम अपने जीवन का प्रयोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? और उसने तो अपने लिए भी नहीं किया, उसने तो समाज के लिए किया। यहां आपको अपने लिए करना है। अपने लिए करेंगे तो आप ही समाज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है तपस्या। तपस्या समझे आप? ऐसे नहीं सचमुच झाड़ के नीचे जाके बैठ जाना है। ये चलते फिरते जीते कार्य करने की तपस्या है। लेकिन ये तपस्या करते करते आपको पता चलेगा, अरे अब तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, अरे ये चीज तो मेरी तपस्या को खंडित कर रहा है, अरे ये संघ जो है ये मुझे प्रेरित नहीं कर रहा है अपनी तपस्या की ओर। आपको डिस्कवर होगा कि कौन सी चीज मुझे जीवन में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो आप ही आपसे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा जिसको कहा जाता है त्याग। पता भी नहीं पड़ेगा आपको कि आपने त्याग किया है, क्योंकि वो आत्मा का निर्णय होगा कि अभी ये चीज की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो यूज करना बंद कर देगी और इसमें आपको कोई अंदर से स्ट्रगल फील नहीं होगी। मुझे याद है मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक था, बहुत मना बहुत, खाली थिएटर में नहीं घर में आके भी, और खुद को ही वो समझने लगी मैं, समझा, इतना शौक। जब गया ना फिर लौट के आया नहीं, ऐसे कैसे हुआ? जो जिगरी शौक था वो फिर से लौट के आया नहीं, गया तो, और मुझे कभी लगा भी नहीं। मना आपको त्याग त्याग लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा का डिसीजन होगा, उसमें आपकी दृढ़ता भरपूर होगी और आप जीत लेंगे, ठीक है? और ऐसे थोड़े थोड़े समय का त्याग नहीं होगा, हमेशा के लिए। जैसे कैंसर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो भाग पूरा निकाल देते हैं ना, तो पेशेंट खुश होता है कि नाराज होता है? अगर उसका कैंसर का भाग डॉक्टर निकाल दे तो पेशेंट खुश होगा कि नाराज होगा? तो ऐसे कई भाग है अपने जीवन के जो कैंसर जैसे हैं, वो आप पे ही निकलते जाएंगे, आत्मा ही निर्णय लेगी, किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी, अच्छी बातें आती जाएंगी, जो जरूरी नहीं है वो जाती जाएंगी। तो त्याग का सब्जेक्ट तो आप ही कवर हो जाएगा। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में इसलिए नहीं जाना चाहिए, वहां से सब छुड़वा देते छुड़वा देते, हमको तो पता ही नहीं चला कौन सी चीज छूट गई और कितना कुछ पा लिया, पता ही नहीं पड़ता है। इतने साल हो गए ना, फिर भी नया ही नया लगता है हर दिन। आत्मा वेरी पावरफुल, कोई बॉम्ब भी आत्मा के सामने कुछ नहीं है, इतनी पावरफुल होती है आत्मा। मना हम आप किसकी बात कर रहे हैं? हम और आपकी बात कर रहे हैं। कितना हमने गवा दिया ना अंदर, एक बार भी हम बोल नहीं पाते हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, एक बार भी नहीं बोल पाते। कितना दूर चले गए ना अपने आप से, दुनिया का पाया बहुत पर अपने से दूर चले गए। अब वापस अपने आप को पाना है, दुनिया कहीं नहीं जाएगी, दुनिया तो यही है, हमको बदलना है, ठीक है ना? तो इसीलिए ये बहुत उमंग उत्साह का सब्जेक्ट है, ये कोई प्रेशर का सब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रेस का सब्जेक्ट नहीं है, ये आत्मा की चमक का सब्जेक्ट है, आत्मा की जिसको हम कहते हैं ना परफेक्शन का सब्जेक्ट है, और वो हमको प्रिय होना चाहिए क्योंकि ये अपनी बात है। तो ये जड़ों में त्याग तपस्या, जब दो सब्जेक्ट चल रही होती है ना तो तीसरा सब्जेक्ट भी आपे ही होने लगता है। वो तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा। आप ही आपके जीवन से, आपके बोल से, आपके कर्म से, आपके व्यवहार से अनेक लोग जो है फायदा उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ। अरे टीवी पे देख के भी कई लोग बोलते हैं कि हमारा जीवन बहुत चेंज हो गया, टीवी पे देख रहे हैं सामने भी नहीं तो भी जीवन चेंज हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें परमात्मा की शक्ति है, इसमें कोई गुरुडम नहीं है, कोई गुरु नहीं बैठा है इधर, और कोई चेला भी नहीं बैठा है, सब एक परिवार है, परमात्मा का परिवार, और परमात्मा से हम सब सीख रहे हैं अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। तो ये है अभी जड़ों में जो कार्य हो रहा है ना, भले वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इसमें एज नहीं आता है बीच में, कोई धर्म की बात नहीं आती है, बस सीधा आत्मा मैं कौन। और फिर परमात्मा बताते हैं कि अच्छा हे आत्मा, अब तू अपने स्वधर्म में स्थित हो जा। तुम्हारा शरीर का धर्म भले कोई भी हो, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जा। मेडिटेशन वही शुरू होता है। जब तक आत्मा अपने स्वधर्म में नहीं स्थित होती है, राजयोग प्रैक्टिस नहीं होता है। वरना मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूं? शुद्ध हूं और शांत हूं। ये हर एक आत्मा का स्वधर्म है, होगा नहीं, है। हर एक आत्मा भले कोई भी धर्म की हो, झाड़ में किसी भी जगह पर है आज, पर हर एक आत्मा का स्वधर्म है शुद्ध और शांत। ये आप याद रख सकेंगे, माई सेल्फ रिलीजन, पीस एंड प्योरिटी। भले हमारी जो भी आदतें होगी आज के दिन, सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, मेरा मुझ आत्मा का स्वधर्म है शुद्धता और शांति। फील तो कर सकते हैं ना, कहां जाएगा, कुछ कहां जाता ही नहीं है, अंदर ही है। जितना उसको फील करोगे, टच करोगे, उतना वो उभर उभर के बाहर आएगा, और जो कचरा है वो अपने आप निकल जाएगा। तो वहां होती है स्थापना का कार्य। परमात्मा कहते हैं ना, ही इज अ क्रिएटर, वो स्थापक है। लेकिन कैसे? वो कोई बिल्कुल नया झाड़ निर्माण नहीं करते हैं, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, फिर ये आया, फिर पानी आया, फिर ऐसे नहीं। अभी ही स्थापना हो रही है, जबकि हम सब झाड़ में मौजूद है। और यही संगम युग का समय है, जब परमात्मा हमारे द्वारा ही ये नव निर्माण कर रहे हैं। परमात्मा का क्रिएशन का कार्य, रचना का कार्य अभी हमारे थ्रू हो रहा है। गॉड, जी ओ डी, जी जेनरेटर। तो जो जेनरेशन का काम है ना, वो अभी हो रहा है। जबकि सारा पुराना झाड़ खड़ा है, वो मैजिशियन है ना, वो क्या करेगा, पुराने झाड़ को ही नया बना देगा। कोई कर सकता है ऐसा? ऐसी जादूगरी कोई दुनिया में कर सकता है? कोई नहीं। एक परमात्मा ही है जो हमारे द्वारा नए झाड़ का पुनः निर्माण का कार्य अभी ही जड़ों में कर रहे हैं। अब जब ये कार्य होगा, तो इसमें तो अलग अलग धर्म के लोग जुड़ेंगे ना। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं तो ये धर्म का हूं, मैं आपके पास क्यों आऊं। सब आते हैं, सब प्रकार के हर एक धर्म वाले आते हैं। कोई भी नहीं ऐसा है जो कभी नहीं आया हो अपने पास और अपना जीवन भी अर्पण किया है। भले वो किसी भी धर्म के हो, उन्होंने अपना जीवन भी अर्पण किया है इधर। जिन्होंने रियलाइज किया है एवरीथिंग इज नाउ बिकमिंग न्यू एंड विल बिकम, तो जिसने ये रियलाइज किया है वो जुड़ गए हैं। एक्चुअली जब परमात्मा का कार्य आरंभ हुआ, तब हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो मेन जो कोऑर्डिनेटर के रोल में थे, उनको पता ही नहीं था कि ये संस्था बनेगी। उनको पता ही नहीं था कि हर जगह जाके ब्रांचेस खुलेंगे। उनको तो लगा बस यही तपस्या से हम नई दुनिया की स्थापना करेंगे और परमधाम चले जाएंगे। बट देयर वाज नो प्लान, देयर वाज नो प्लान। परमात्मा जो कराते गए वो करते गए। ये सब बहुत बाद में ज्यादा क्लैरिटी आई, जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसे थे और उनके साथ जो उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी उस समय कि आगे क्या होगा, उनको तो जो बताया जाता था ना बस वही प्रैक्टिस करते थे। इतना मालूम था नई दुनिया आने वाली है, इतना मालूम था, क्योंकि साक्षात्कार होते थे तैयार तभी। ऐसा एक भी नहीं था जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ हो उस समय कि नई दुनिया आने वाली है, उसी के आधार से वो करते गए, बाकी कोई प्लानिंग नहीं था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जितना जितना ये कार्य होता जाएगा जेनरेशन का, माना अनेक आत्माएं जुड़ेगी और अनेक आत्माएं योग द्वारा तपस्या द्वारा अपने आप को फिर से नया बनाते जाएंगे, तो आगे जो नया झाड़ आएगा तो क्या होता है, जमीन से क्या निकलता है, एक ऐसे छोटी सी डाली और उसमें दो कोमल से पत्ते, है ना? पता है आपको वो दो कोमल पत्ते कौन होंगे? वो होंगे आदि सनातन, माना सबसे पहला, सनातन माना सबसे पुराना, देवी देवता धर्म की पहली दो आत्माएं, जिससे ये पूरा विश्व माना जाएगा, और वो है श्री कृष्ण और श्री राधे, ये दो कोमल से पत्ते। माना वो जो जन्म है ना वो ही प्योर होगा, जन्म वैसा ही होगा मां बाप के द्वारा, पर ये दो एब्सोल्यूट प्योर आत्माओं से नई दुनिया का आरंभ होगा और सत्युग की शुरुआत होगी। लेकिन सत्युग का फर्स्ट डेट 111 जो कैलेंडर में होगा वो उस दिन कहा जाएगा जब श्री कृष्ण और श्री राधे बड़े होकर जब उनका राज्य अभिषेक और उनका स्वयंवर, सेम डेट, जब जो श्री कृष्ण है वो श्री नारायण कहलाएंगे और श्री राधे जो है वो श्री लक्ष्मी कहलाएंगी, वो स्वयंवर के दिन और राज्य अभिषेक का दिन। दैट 111 इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू साइकिल, जो नया झाड़ निर्माण हुआ, जो सत्युग का आरंभ हुआ, उसका वो पहला दिन होगा, समझा? और अगर कृष्ण और राधे जैसे हैं, तो दूसरे सब कैसे होंगे? जैसा राजा वैसी प्रजा, उनके साथ जितनी भी आत्माएं होंगी वो सब A1 क्वालिटी, A1। फिर कंस कहां से आया भाई? एक कंस तो कमर्शियल बना दिया कि भाई विलन बिगर कैसे कोई समझेगा कि सत्य क्या है, इसीलिए एक विलन का कैरेक्टर डाल दिया। बाकी आदि सनातन देवी देवता, माना स्त्री जो है वो देवी है, पुरुष जो है वो देवता है, वो काल में कोई कंस हो ही नहीं सकता। हर एक आत्मा अपने पोटेंशियल में है, संपूर्ण स्थिति में है सत्युग में, और वहां से सत्युग में जन्म बाई जन्म झाड़ आगे बढ़ेगा। सत्युग में जब सत्युग पूरा होगा तब तक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य सारे विश्व पर होगा। सारे विश्व किसको कहेंगे? भारत, उसे ही महाभारत बोला गया है। महाभारत माना पूरा विश्व एक, उस पर एक का राज्य, माना सारे विश्व के प्रथम विश्व महाराजा और विश्व महारानी श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। ऐसा कभी याद आया? यही तो हमारे पूर्वज सबसे पहले, इसीलिए तो उनके नाम के मंदिर बनाए, उनकी पूजा तब आरंभ की जब रियलाइज किया कि वो प्यूरिटी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब तक वो प्यूरिटी हमारे अंदर थी हम तो उनके राज्य में थे। तो सतयुग और त्रेता, सतयुग जैसे पूरा होता है, सतयुग में बहन आपको कल भी समझाएंगी कि सतयुग में 8 जन्म का स्पेस है, 1250 इयर्स में कुल 8 जन्म है, क्योंकि आयुष्य बड़ा है, एवरेज 150 जितना आयु है, इसीलिए 8 जन्म होते हैं और वो 8 पीढ़ी फुल जिएंगे, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं, कोई अचानक या चाइल्डहुड में कोई मृत्यु नहीं, एकदम नॉर्मल पूरा जीवन जीना पूरी लेंथ। तो ऐसा जो सतयुग का पीरियड होगा जिसमें कंप्लीट सब निरोगी होंगे, संपन्नता होगी, कोई क्लेश नहीं होगी, ब्यूटीफुल होगा हर चीज, उसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के 8 राज्य चलते हैं। तो वहां कौन से धर्म की बात चलेगी? कोई धर्म की बात चलेगी? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म तो हम वर्णन कर रहे हैं अभी, उस समय ये भी लेबल नहीं होगा, क्योंकि धर्म जीवन के अंदर होगा, धारणा में होगा। कोई धर्म का लेबल था ही नहीं बिगिनिंग में, कोई धर्म की बात ही नहीं करता था, क्योंकि नेचुरली अपना जीवन ऐसा ही था, वैल्यूज वाला, प्रिंसिपल्स वाला। इसीलिए सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म बोलेंगे, एक ही भाषा, एक ही जिसको हम कहेंगे विश्व, एक ही विश्व, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही भाषा, सब एक होगा और इसी धरनी पर होगा, जिसको हम आज भी भारत कहते हैं। बाहर के लोग ने हिंदुस्तान और क्या क्या नाम रख दिया, इंडिया, हमारा भारत, और यही पहले था सतयुग और त्रेता युग में। त्रेता युग में जो 9वां जन्म है, तो जब राम जी का बर्थडे आता है कैलेंडर में तो क्या लिखा जाता है, राम नवमी, और कृष्ण का बर्थडे आता है तब क्या लिखा जाता है, अष्टमी। तो जो 8 राज्य है वो कृष्ण के है, और वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण, ऐसे 8 पीढ़ी लक्ष्मी नारायण का राज्य, और 9वां राज्य जो है वो श्री राम और श्री सीता का। और उस त्रेता युग में जो 12 जन्म का पीरियड है, उसमें 12 की 12 राज्य राम सीता के होंगे, जिसमें कोई रावण नहीं होगा, सच्चा राम राज्य, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, एक विश्व। जैसे झाड़ का थड़ भी एक होता है, तो एग्जैक्टली जो थड़ है ना, वो सतयुग और त्रेता युग है। फिर उसके बाद डालियां शुरू हो जाती है। समय समय की बात है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। तो जब देवी देवताएं अपनी पवित्रता की जो धर्म है अपना, जब वो छोड़ने लगते हैं ना, जब वो छोड़ने लगते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे सूक्ष्म रीति से आने लगता है, उस समय प्रकृति का भी प्रकोप होता है। और इसीलिए जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो राज्य था ना, वो काफी कुछ चला जाता है, कुछ निशानियां रह जाती है, जिसके आधार से मंदिर बनने लगते हैं। और वो समय है द्वापर युग, जब नई डालियां शुरू होती है। और आप नहीं मानेंगे, जितने भी दूसरे धर्म है ना, जितने भी, उन सबके बिगिनिंग करने वाले सब भारत से ही है, कोई बाहर से नहीं है, लेकिन वो अपनी मान्यता से कहीं और चले गए और फिर वहां उनके धर्म की महिमा ज्यादा हो गई। बाकी आप देखिए, इस्लाम के जो इब्राहिम थे वो ब्राह्मण परिवार के थे, उनके उनके परिवार वाले मूर्तियां बनाते थे, लेकिन वो कहता था, उसको अपने आप आता था कि नहीं, ये भगवान नहीं है, भगवान जो है ना वो निराकार है। और ये लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये लोग मूर्तियां बनाते थे, कि तुम ऐसे मत बोला करो, एक दिन जब माँ बाप घर में नहीं थे तो इसने क्या किया, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। फिर जब माँ बाप घर में, तो ये क्या हो गया, तो बोला कि नहीं ये जब मूर्ति सब लड़ रहे थे आपस में और सब मर गए, तो बोलते ऐसी क्या बात करते हो, मूर्तियां हैं वो अपने आप थोड़ी करेंगे। तो कि मैं भी वही कहना चाहती हूँ, चाहता हूँ कि ये मूर्तियां, ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार है। वही फिर अल्लाह के नाम से आगे गया, कहां से निकला, भारत भूमि से। ऐसे कई आत्माओं को नई नई प्रेरणाएं मिलती गई और वो अपनी प्रेरणाओं को फैलाते फैलाते कहीं ना कहीं स्थित हो गए। ऐसे जैसे डालियां अलग अलग हो जाती है, ऐसे यही से थड़ से ही डालियां अलग अलग हुई और अलग अलग धर्म की स्थापना हुई। और नए नए धर्म की स्थापना का समय बुरा नहीं होता है, वो एक नया विचार लाता है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद आए, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती आए, क्यों आए, समाज को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। ऐसे ये नए नए विचारधारा वाले आए और उन्होंने नई नई धर्म की स्थापना की, लेकिन धीरे धीरे आत्माएं स्वधर्म को भूलते गए और पर धर्म, काया का जो धर्म था, उसी में धीरे धीरे फंसते गए। इसीलिए जो धर्म सतो प्रधान था, वो धीरे धीरे सतो सामान्य, रजो और फिर एकदम तमो प्रधान की स्टेज पर आ गया। जब तमो प्रधान की स्टेज होती है ना धर्म की, तो केवल धर्म की बातें होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ, आपको गीता मिलेगी या ग्रंथ साहिब मिलेगा या कुछ मिलेगा, पर उनके जीवन में उसका कुछ भी नहीं होगा। उसी में खुश हो जाते कि हाँ हम आज जाके आए, नमन करके आए, एक भजन गा के आए, आरती करके आए, आज तो हमारा चांस था, हमने आंगी सजाई थी, ऐसे ऐसे बोलेंगे। पर जीवन में कुछ नहीं, घर में क्लेश, संस्कारों का टकराव, एक दूसरे को दुख देना, यहां तक कि छोटी बातों में भाई भाई का मर्डर कर देना, अब ये थोड़ी कोई धर्म सिखाता है। अभी भी प्रेजेंट काल में देखो क्या हो रहा है, हम सबके अंदर आ रहा है कि पता नहीं कब वो युद्ध छिड़ जाएगा यहां, क्योंकि एक दूसरे को नहीं वो कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, छेड़, एक धर्म वाला दूसरे धर्म को छेड़ रहा है। अब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक तो होने का सवाल ही नहीं है। तो धर्म युद्ध का भी समय फिर आता ही है, क्योंकि मनुष्य की धारणाएं धर्म के नाम से युद्ध करती है। तो मैं धर्मों की डिटेल्स में नहीं जा रही हूं, वो हर एक धर्म अपने अपने समय पर आए, बहुत धर्म है और उन धर्मों में भी कितने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो गए। जैसे एक जैन धर्म है, आज देखो तो कोई कहेगा मैं स्थानकवासी हूं, कोई कहेगा मैं देरावासी हूं, कोई कहेगा मैं दिगंबर हूं, कोई कहेगा मैं श्वेतंबर हूं, कोई कहेगा नहीं मैं तो ये गुरु को फॉलो करता हूं, कोई कहेगा ये गुरु को फॉलो करता हूं। माना एक धर्म भी एक धर्म नहीं रहा, उसके भी कितने छोटे 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 अंश हो गए, है ना। तो ऐसा तो एकता ला नहीं सकता ना, ऐसे तो कोई धर्म जहां एकता ही नहीं है, ऐसे हर एक धर्म का हुआ है, हर एक धर्म का। इवन जो देवी देवता थे उनका क्या हुआ, वो भी आगे जाकर के अपनी ही पूजा करने लगे, अपने ही बड़े हैं ऐसा समझ के कि हमारे वड़ील है, हमारे पूर्वज है, ऐसा समझ के उनके मंदिर बनाने लगे और पूजा पाठ विधियों में सब चले गए, धारणाएं सारे धीरे धीरे कम होती गई। और इन सब का बीज, जैसे शिव बाबा बीज है ना स्वर्ग बनाने के लिए, ऐसे नरक बनाने का बीज है काम, कामनाएं, काम की अग्नि, ये जो इच्छा जिसको कहते हैं, कोई भी प्रकार की इच्छा, शरीर के लिए इच्छा, खाने पीने की इच्छा, पहनने ओढ़ने की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, नामना की इच्छा, जो भी इच्छा है वो सब काम के अंदर आता है। लस्ट, इंग्लिश में कहते हैं लस्ट, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर पोजीशन, लस्ट फॉर बॉडी, लस्ट फॉर फूड, सब उसमें आ जाता है। उसी ने देवी देवता पोजीशन से गिराया और साधारण मनुष्य बनाया, और वो साधारण मनुष्य कहलाने वालों ने अपने पूर्वज देवी देवताओं के मंदिर बनाए और उनकी पूजा करने लगे, उनको हाई रिस्पेक्ट देने लगे, पर वो रिस्पेक्ट वो खुद को नहीं दे पाए। नेचुरली है ना, इसे झुकने लगे, सब पैरों में झुकने लगे। भले एक रीति से हमको दुनिया सिखाती है कि भाई दिस इज अ वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, आपको बड़ों के पैर छूने चाहिए, पर दूसरी रीति से आप देखो तो आपको झुकना पड़ा है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपका जैसे जैसे कम होता जाता है, आपको झुकना पड़ता है। एक है झुकना माना मोल्ड करना अपने आप को, वो तो अच्छी बात है, पर एक है कि अपनी आदतों की तरफ झुक जाना, बुरे संग की तरफ झुक जाना, ये कोई अच्छा थोड़ी है झुकना। तो इस तरह की गिरावट आई मनुष्य आत्मा के अंदर, इसलिए धर्मों में भी आई ये गिरावट। और आज हम देखते हैं सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं और सब यही प्रूव करना चाहते कि हमारा नंबर वन है, जबकि जब हम देवी देवता थे हम तो धर्म की बात भी नहीं करते थे, इतना नेचुरल था हमारे लाइफ में। और अभी देखो तो धर्म के नाम से, धर्म के नाम से कितनी बातें होती है, कितने महफिल सजते हैं, पर जीवन में वही दुख, वही अशांति। इसीलिए अब भगवान को स्थापक के साथ साथ ऑपरेटर माना, पालना देने वाले पालक वो भी बनना पड़ेगा। खाली स्थापना नहीं, पालना भी देनी होगी। जब तक पालना नहीं देंगे तब तक हमारे अंदर संस्कार जो है वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो ये जो परमात्मा का कार्य है ना, स्थापना करना, पालना देना, वो अभी चल रहा है प्रैक्टिकल में। इसीलिए इस संस्था में कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सदगुरु एक ही है परमात्मा, और वही शिक्षक है और वही माता पिता है, और वही कार्य करा रहा है। हम तो केवल आज्ञाकारी होकर के उनके कार्य में सहयोग दे रहे हैं। और वो किन के लिए कर रहे हैं? उनको कुछ मिलने का है? उनको कुछ नहीं मिलना है, हमको ही मिलना है। जो मिलना है, कहते ना भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो छप्पर फाड़ के देने को आया है और खुद उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम अपना तीसरा नेत्र खोले, पहचाने कि कौन सा समय चल रहा है और कौन आया है हमारे सामने, कौन आया है, हमको क्या बनाने के लिए आया है, अब समय कैसे महापरिवर्तन से गुजरने वाला है। तो एक कल्प के अंत में परमात्मा का ये कार्य फिर से शुरू हो गया है, एक सत धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश। आपको किस ग्रुप में जाना है? एक सत धर्म की स्थापना वाले ग्रुप में या अनेक धर्मों के विनाश वाले ग्रुप में? अभी से डिसाइड कर लो। महाभारत के युद्ध में ना वो थोड़ा समय दिया बीच में सबको और कहा अभी टाइम है, जिसको भी अगर ग्रुप चेंज करना हो कर ले। टाइम दिया था ना भगवान ने, वही टाइम अभी है कि अभी भी आप अपना ग्रुप चेंज कर सकते हो। या तो आप एक सद्धर्म की स्थापना में ग्रुप में रहो या अनेक धर्मों के विनाश में। आप जो सिलेक्ट करोगे आप वो कार्य करोगे। तो इसीलिए यहां पर ये सीन दिखाया है कि कैसे तीन रीति से, फिर तो पुराना वृक्ष नहीं रहेगा ना, एक बार नए वृक्ष का निर्माण हो गया फिर पुराना वृक्ष तो रहेगा नहीं, तो वो कैसे जाएगा? पहला है न्यूक्लियर वॉर जो अभी शुरू हो गया है, तो भी कई लोग हैं जो कहते नहीं बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं होगा। थोड़े समय के लिए तो हर चीज बंद होती है, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना, और जो डिसीशंस ले रहे लीडर्स, वो कोई सारे विश्व के बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए ले रहे हैं। ये भी कितना स्पष्ट हो रहा है, अभी पहले तो पता ही नहीं पड़ता था हमको, लेकिन अभी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कौन अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है। तो भी हम चल रहे हैं, क्योंकि उनको क्या बताएंगे हम। लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है। तो एक है न्यूक्लियर वॉर, दूसरा है ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध, भारत में न्यूक्लियर का प्रकोप कम है, रक्त की नदियां ज्यादा बह रही है और बहेगी, क्योंकि धार्मिक युद्ध का बहुत बड़ा स्थान है ये, कोई झुकने वाला नहीं है, सब लास्ट तक छीनने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हमें अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। और तीसरा है, जब ये दोनों बहुत काम करेंगे तो क्या हालत होगी संसार की, उसको क्लीन करने के लिए प्रकृति के पांच तत्व काम करेंगे। पांचों ही तत्व एक साथ काम करेंगे और पूरे सृष्टि को की सफाई करेंगे। और ऐसे ये पुराने वृक्ष का विनाश, ये तीसरा कार्य है परमात्मा का। कहा जाता है जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ये विनाश परमात्मा नहीं कर रहे हैं, पर परमात्मा को ज्ञान है कि ये होने वाला है। तो हमको ये विनाश का पूरा साक्षात्कार संस्था की शुरुआत में करा दिया था परमात्मा ने, हमारे स्थापक ने ये पूरा साक्षात्कार देख लिया था कि ये होने वाला है, जबकि बॉम्ब भी नहीं बना था 36 में, तभी उन्होंने देखा कि आग के गोले बरस रहे हैं। लेकिन वो साक्षात्कार इतना ऑथेंटिक था कि उनको निश्चय बैठ गया कि ये जो मुझे जो दिखा रहा है ना, वो परमात्मा है। और वहीं से राजयोग का अभ्यास आरंभ हुआ। तो इसीलिए ये है पुराने कल्प वृक्ष का विनाश और नए कल्प वृक्ष की स्थापना साथ साथ में हो रही है। विनाश का आवाज ज्यादा होगा, स्थापना हमेशा साइलेंस में होती है। बीज जो डालते हैं ना जमीन में, उसमें आवाज नहीं होता, साइलेंस में होता है। और जो विनाश होता है ना, उसमें आवाज होती है। तो इसीलिए साइंस का रोल ज्यादा विनाश की तरफ रहेगा, साइलेंस का रोल ज्यादा पुनः स्थापना की ओर है। अब आपको ही चूज करना है कि मुझे किस साइड रहना है, स्थापना की साइड कि विनाश की साइड। मुझे गीता का कहा हुआ पांडव बनना है, या गीता में मेंशन किया हुआ कौरव बनना है, या यादव बनना है। पहले से देख लो क्या बनना है, ये हमें सारे धर्मों का झाड़ सिखाता है। ये अभी समय है पर धर्म, क्योंकि गीता में ऐसा पूरा लाइन है, देह सहित देह के सब धर्म, सब संबंध, सबको भूल करके अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। ये कब कहा जाता है, जब कलयुग का अंत होता है, जब धर्म के नाम पे युद्ध है, तब भगवान आकर कहते हैं बच्चे इस घड़ी अपने देह को भी भूलो, देह के संबंध को भी भूलो, देह के धर्म को भी भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ परमात्मा पिता को याद करो। आज्ञा मिल चुकी है, फरमान निकल चुका है, अब अपने ऊपर है। हम सब उसी युद्ध के स्थान पर है, और इसी युद्ध के स्थान पर रहते हुए हमें यथार्थ निर्णय लेने होंगे। मुझे अपना भाग्य बनाना है, या मुझे प्रकृति के हाथों, मनुष्य के हाथों अपनी गति करानी है। तो ये अभी डिसाइड करना है. एनी क्वेश्चन? इसमें कोई प्रश्न है आपको? कल्पवृक्ष, उसके बीज और उसकी कैसी स्थापना, पालना, विनाश का जो पूरा कार्य है. आप देखेंगे एक साइड में तीनों लोक बताए हैं, सर्कल में तीनों लोक बताए हैं. उसमें आप ऊपर परम धाम में देखेंगे ना, तो वो निराकारी झाड़ जो बताया था ना, वो दिखाया है. और यहां सृष्टि का खेल. और इसमें है ना, कन्याएं और माताओं का बहुत बड़ा रोल है, जो परमात्मा ज्ञान का कलश इस कार्य के लिए कन्याओं और माताओं के सिर पर रखते हैं. क्योंकि आप देखिए, भारत में देवियों का पूजन जितना ज्यादा है ना, उतना देवताओं का नहीं है. और नदियों का नाम भी सब स्त्री के ऊपर है, जितनी भी नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र ही है, बाकी सब नदियां स्त्री के नाम से. क्यों? भारत को भी माता बोलते, सभी देश पिता है और भारत केवल माता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तब कन्याओं और माताओं को शिव शक्तियां बनाते हैं, उनके सिर पर ज्ञान का कलश देकर कहते हैं कि आपको ही सारे विश्व को मेरा संदेश देना है. इसका मतलब ये भी नहीं कि पुरुषों को कुछ नहीं करना है, पुरुषों को पूरा साथ देना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है, क्योंकि आखिर में आप भी तो आत्मा हो. सबके सहयोग से सुखमय संसार बनता है. लेकिन आपको मालूम होगा ना, बहुत काल से स्त्रियों को सेकंड नंबर भी नहीं, और पीछे किया है. कहते हैं जुत्तियों में है, स्त्री का स्थान जुत्तियों में, स्त्री नरक का द्वार है, फलाना है, ये है, वो है. परमात्मा ने उन्हीं को उठाया. और उस समय पर्दा सिस्टम था, जहां पर शुरू हुआ वहां पर्दा सिस्टम था, वहां से निकाल के परमात्मा ने उनको लीडर्स बनाया. यहां एक भी फॉलोवर नहीं मिलेगा, सब लीडर्स, सब अपने जीवन के लीडर्स. तो ये भगवान का प्लान है, ये कोई साधारण व्यक्ति का प्लान नहीं है. जब आपका कनेक्शन उनसे होगा ना डायरेक्ट, तो आपको वो रियल सत्य जो है धीरे धीरे आपके अंदर जागृत, उजागर होने लगेगा. नहीं तो यू विल सी एवरीथिंग फिजिकल, उसमें कुछ नहीं मिलेगा. बोलेगा हाँ बहुत अच्छा लगा माउंट आबू में, वेरी नाइस, क्लाइमेट भी बहुत अच्छी थी, वहां रहने करने का भी अच्छा, सिंपल नाइस था, सब क्लीन था, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, ये और स्पीकर्स वर ऑल्सो वेरी नाइस, फिनिश. क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला. जब तक सत्य के साथ नहीं जुड़े, कुछ नहीं मिला. इसीलिए अभी भी एक दिन है, कल जाने से पहले एक बार सोच लेना, मैंने क्या सुना यहां, किसने सुनाया? ये कोई मनुष्य की ताकत है ये सब सुनाने की? जरूर अपने से बात करना एकांत में, तो आपको जरूर कुछ तो रियलाइजेशन के साथ आप यहां से निकलेंगे. बाकी नेक्स्ट ट्रिप करो, 10 ट्रिप करो, कोई फायदा नहीं. इट्स लाइक गोइंग फॉर डिटॉक्स, क्लीन हो गए, अच्छा लगा, वापस गए, ये वो नहीं है. यहां डीप रियलाइजेशन का समय है, स्पेस है जो आपको मिलता है. आप क्या से क्या बन जाते हो, कोयले से एकदम हीरे जैसे, इतना महापरिवर्तन अपनी लाइफ का. आपको ही करना होगा, आपको ही देखना होगा, बाकी परमात्मा की शक्ति आपके साथ पूरा पूरा सदा रहेगी, क्योंकि वो ही करा रहा है. करण करावन हार तो वो है, हम तो सब निमित्त है. चलिए मेडिटेशन में चले. कोई क्वेश्चन है? वॉर है, लेकिन वॉर अलग है. नहीं, योग, योग में युद्ध होता है. नहीं नहीं, वो शस्त्र वाले अलग, और हमने जो ये ज्ञान लिया ना, और हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के शास्त्र अलग है, दे आर डिवाइन। तो जब आप अपनी स्थिति बनाओगे ना, अंदर से अपनी स्थिति बनाओगे, तो ऐसे इतने अनुभव है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, बैठिए प्लीज। अफ्रीका में आपको मालूम है ना, कभी भी शूट होता है वहां पर, कभी भी कोई भी गन लेके घूमता है, पहले तो बहुत होता था। तो अपनी एक मेंबर थी, वो वहां पर रहती थी और वो सवेरे के क्लास में जा रही थी और एक शूटर सामने से ही आ रहा था और उसने शूट किया और उसके पीछे वाला व्यक्ति को लग गया और वो मर गया। जब केस हुआ और सामने बुलाया कि जितने भी विटनेस थे उस समय वो आ जाए, तो उस व्यक्ति को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेंबर थी उसमें उस समय रास्ते पे, उसको दिखाई नहीं दी। वो कहता नहीं, ये तो थी नहीं, ये क्या विटनेस दे रही है। आई मीन शी वॉज नॉट विजिबल टू हिम, क्योंकि वो इतना मेडिटेशन में थी कि उसकी देह का विजिबिलिटी नहीं थी उस व्यक्ति को। ये है वन ऑफ द प्रूफ दे रही हूं, वन ऑफ द प्रूफ। इसे ऐसे तो कितनी बार हुआ है कि कहीं भी गए हैं और ऐसी अनुभूतियां हुई है कि भाई कितना भी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कुछ भी फील नहीं हुआ है। तो ये रिजल्ट है मेडिटेशन पावर का। तो हमारा युद्ध चल रहा है, कहां चल रहा है, इधर चल रहा है। जब तक हम अपनी नेगेटिविटी से लड़ते रहेंगे ना भाई, तब तक हम शिकार बनने वाले हैं। लेकिन जब हम नेगेटिविटी पर जीत पाएंगे ना, तो हम वो शिकार तो नहीं बनेंगे और प्रकृति तो हमको मां जैसे लगेगी। जब प्रकृति का प्रकोप होगा ना, हमको प्रकोप नहीं दिखेगा, हमको लगेगा अपनी मां हमको लेने के लिए आई है। प्रकृति की बाहर हमको फील होंगी, एक अलग ही अनुभूति होगी। आप समझ रहे हो ना, वो चेंज अपने में आ सकता है अगर आपको चाहिए तो। नई दुनिया आने वाली है तो ये शरीर नहीं चलेगा ना, तो ये शरीर की मौत तो लिखी हुई है। इसमें फर्क होगा, आत्मा की गति में बहुत फर्क होगा जी। एक है शिकार बनना और एक है विजयी बनना, ये दोनों में बहुत अंतर होगा जी। ओम शांति। वेरी गुड क्वेश्चन। हमने क्या देखा, परमात्मा कौन था वृक्ष में, बीज, बीज था ना। और बीज के अंदर क्या संकल्प होता है वृक्ष के लिए, अच्छा उगे। कोई बीज सोचेगा ये झाड़ मेरा अच्छा नहीं उगना चाहिए, नहीं। हर बीज का संकल्प होता है झाड़ अच्छा हो, है ना। तो परमात्मा का संकल्प हमेशा सुखदायी होता है। इसीलिए जो दुनिया कहती है ना कि दुख आया परमात्मा की मर्जी से आया, परमात्मा के अंदर कभी अशुभ ख्यालात आते ही नहीं है। लेकिन ये आत्मा और प्रकृति का खेल है जिसमें ये परिवर्तन आता है। फिर परमात्मा कब आते हैं, जब आत्माओं का कंट्रोल नहीं रहता है, तो फिर परमात्मा आते हैं आत्माओं को उजागर करने के लिए। इसलिए परमात्मा की मर्जी ये नहीं है कि यहां तूफान आए या बाढ़ आए, ये परमात्मा की मर्जी नहीं है। लेकिन परमात्मा को पूरे कल्पवृक्ष का ज्ञान जरूर है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द स्टोरी। पूरा स्क्रिप्ट क्या है वो परमात्मा जानते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ही हैज नॉट डन इट बट ही नोज अबाउट इट, इसीलिए वो ज्ञान दे रहे हैं हमें, वो समझ दे रहे हैं कि देखो बच्चे अभी ये टाइम है, अब ये टाइम में ऐसा ऐसा होगा, तो तू मेरी बात सुन। जो मेरे को सुनेगा, मेरी श्रीमत पर चलेगा, उसकी गति श्रेष्ठ होगी। आप समझ गए ना, गति श्रेष्ठ होगी ना, गति समझते हैं ना आप, जो आप लास्ट में सोचेंगे वैसे गति होती है। तो जो परमात्मा की याद में होगा उसकी गति कैसी होगी, और जो बॉम्ब में, भय में, किसी को मारने काटने में ख्याल में होगा, उसकी गति कैसी होगी, बहुत फर्क होगा ना। समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए परमात्मा को जितना आप अच्छी तरह समझेंगे ना, उतना आपको रियलिटी अनुभव होगी। बाकी जो पुराना वृक्ष नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसको नए वृक्ष को राह देनी है, इसलिए दोनों चीजें हो रही है, रचना भी हो रही है और विनाश की ओर भी हम जा रहे हैं, दोनों होगी। 7 बज गया है भाई साहब, हम क्लास के बाद मिले। थैंक यू सो मच। अभी बहनें आएंगी मेडिटेशन के लिए और हम सब मिलकर के मेडिटेशन करेंगे। आपको कमेंट्री चाहिए, शब्दों से आपको गाइड करे? ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन में कहां बैठेंगे? क्लासरूम में कहां बैठेंगे? लेकिन कहां बैठेंगे, हमारी पोजीशन कहां होगी आज मेडिटेशन में? बोलो बोलो बोलो। कल्प वृक्ष के नीचे, जड़ों में, बीज के साथ। हम सब ऐसा महसूस करेंगे और ये चित्र रहेगा सामने वृक्ष का, लेकिन आप अपने को कहां देखना? वृक्ष के जड़ों में, बीज के साथ, शिव बाबा के साथ। बैठने की पोजीशन, थोड़ा सीधा बैठेंगे, सामने की ओर देखेंगे, एकदम साधारण रीति से आत्मा आंखों को खुला रखेंगे और हाथ की पोजीशन या तो ऐसे करके रखे जिसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, या ऐसे दोनों हाथों को मिला के ऐसे अंगूठे दो मिलने चाहिए और अपनी गोद में अपने हाथ ऐसे रखे। ये बहुत बेस्ट होता है एकाग्रता के लिए और एक पोजीशन मेंटेन होती है, क्योंकि हम अगर अभी मेडिटेशन करेंगे तो शरीर में बहुत चंचलता होती है, शरीर हिलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, किसी को सिर में खुजली आएगी, किसी का ध्यान इधर उधर जाएगा, किसी का पोजीशन बदलेगा, ये बहुत कॉमन है। पर हमको मेडिटेशन में थोड़ा डिसिप्लिन अपने शरीर का भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहो कि जिससे आप अपनी पोजीशन आधे घंटे के लिए मेंटेन कर सको। एकदम सहज रूप से बैठे हो, सामने देख रहे हो, लेकिन मन और बुद्धि को एक दिशा देनी है। राजयोग माना ही आत्मा की रूहानी यात्रा। दो आंखों के पीछे, दो कानों के मध्य में, मस्तिष्क के आगे, मैं अपनी प्रकाशित स्वरूप में अपने सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं प्रकाश स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप, सितारे के समान जगमगाता हुआ एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस 5 तत्व के बने हुए शरीर का मालिक, शरीर की सारी इंद्रियां मुझ आत्मा के कर्मचारी है। ये सारा शरीर मुझ आत्मा का राज्य है। इसीलिए मैं आत्मा इस सृष्टि पर, इस शरीर का आधार लेती हूं। ये शरीर मुझ आत्मा का साधन है, जिसके द्वारा मैं चैतन्य सत्ता इस सृष्टि रूपी मंच पर अपना पाठ बजा रही हूं। और ये पाठ केवल अभी का नहीं है, अनेक जन्मों का है। एक लंबे समय की इस धरा पर मैं आत्मा यात्री हूं। मुझ आत्मा का संग अनेक आत्माओं के साथ जन्म बाय जन्म हुआ है। किनों के साथ सुख का संग हुआ है, किनों के साथ दुख का भी संग हुआ है। मुझ आत्मा में ये सारे रिकॉर्ड भरे हुए हैं। अब पहले मैं अपने आप को कल्प वृक्ष के एकदम ऊपर साक्षी होकर देखने का प्रयास करूं। जहां से सारा वृक्ष अनेका अनेक मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, अनेका अनेक राज्य, अनेका अनेक देश प्रांत, अनेका अनेक धर्म मुझ आत्मा को महसूस हो रहे हैं। हर एक मनुष्य आत्मा ने कल्प वृक्ष की कोई ना कोई टाल टाली को पकड़ के रखा है। और हरेक के मन में एक महाभारत युद्ध चल रही है। सबके मन में एक ही प्रश्न है, सत्य कहाँ है, सत्य क्या है? क्योंकि जो सत्य होता है वो कभी दुख दे नहीं सकता। कल्प वृक्ष के इस सारे दृश्य में साक्षी होकर मन और बुद्धि से अपने आप को जड़ों में ले आओ। जहां से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी, अब हम सब कल्प वृक्ष के जड़ के में अपना अपना स्थान ले चुके हैं। हम सब अपना योगी रूप अनुभव कर रहे हैं। और इस जड़ में हमारा कनेक्शन परम पिता परमात्मा शिव बाबा से हो रहा है, जो इस सारे कल्प वृक्ष के चैतन्य बीज के समान है। जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, ऐसे इस चैतन्य सर्वश्रेष्ठ बीज में सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, आदि का, मध्य का और अंत का ज्ञान। हम सब आत्माएं त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी परमात्मा के संग में बैठे हैं। शिव बाबा से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल पावर फिर से भरपूर करने के लिए अपने आप को संपन्न बनाने के लिए बैठे हैं। जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान के सागर रचता पालनहार विनाश का कार्य कराने वाले हम ऐसे त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के अनादि अविनाशी संतान डायरेक्ट उनके कनेक्शन में बैठे हैं। हम अपने देह के धर्म, देह के संबंध, देह के पार्ट, इन सब से थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुक्त कर सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद की ज्योति जगाएं। उनके प्रकाश की ओरा में अपने को महसूस करें। उनके वाइब्रेशंस को अपनी में समाते चले। परमात्मा हमें स्मृति दे रहे हैं कि हे आत्मा, तुम भी चैतन्य बीज हो और तुम मेरी अनादि अविनाशी संतान हो। कितने युगों से अलग रहे, अब फिर से मिले हैं। तुम्हारी ही पुकार पे मैं तुम्हारे पास आया हूं। महसूस करो परमात्मा पिता का दिव्य संग अपने साथ। अंदर ही अंदर परमात्मा पिता की जो महिमाएं हैं वो याद करो कि मुझ आत्मा के पिता की क्या क्या महिमा है। मैं क्या क्या गुण गाता था परमात्मा के लिए। अपने आत्मा उनके दिव्य संग में, प्रैक्टिकल में उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनके ज्ञान का प्रवाह अपने तक पहुंचते हुए महसूस कर रहा हूं। इस महापरिवर्तन की बेला में मुझ आत्मा का परम रक्षक शिव बाबा के साथ हूं। मैं नीडर, बेफिकर, गहन चिंतन में, चिंताओं से मुक्त, मैं तपस्वी राज योगी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की तपस्या कल्प वृक्ष के जड़ों में है और इस तपस्या का प्रवाह सारे कल्प वृक्ष को प्राप्त हो रहा है। एक ही स्थान पर बैठकर सारे विश्व तक अपनी पॉजिटिव रूहानी वाइब्रेशन सब तक पहुंचा रहे हैं।